ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये यजुर्वेदीय शुक्ल यजुर्वेदीय श्रुति है, 40वें अध्याय का ये प्रथम मंत्र है। वेदों में ज्ञान में नियुक्त करने वाले बहुत थोड़े मंत्र हैं, कर्म में नियुक्त करने वाले बहुत है। 80,000 मंत्र कर्म में नियुक्त करते हैं, 16,000 मंत्र उपासना में नियुक्त करते हैं और 4,000 मंत्र केवल ज्ञान में नियुक्त करते हैं, क्योंकि ज्ञान इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म में नियुक्त करने वाले मंत्र ज्ञान का निषेध करते हैं, ऐसा नहीं है, या उपासना में नियुक्त करने वाले मंत्र ज्ञान का निषेध करते हैं, ऐसा भी नहीं है, और ज्ञान भी कर्म का निषेध करता है, ऐसा भी नहीं है। इन मंत्रों में ज्ञान की प्रधानता है, अन्य मंत्रों में किसी में कर्म की प्रधानता है तो किसी में उपासना की प्रधानता है, परंतु इन तीनों का भी अंतर्भाव तत्व में ही होता है। कर्म भी जो बताया जा रहा है तत्व बोध के ही लिए, उपासना भी जो कही जा रही है तत्व के ही लिए, और ज्ञान भी जो बताया जा रहा है वो भी तत्व के ही लिए है, क्योंकि परमात्मा के शास्त्रों ने तीन रूप बताए हैं। एक है देखने के लिए है, एक समझने के लिए है और एक जानने के लिए है, इसलिए एक क्रम है, श्रुतियों का भी एक क्रम है। श्रुति कहती है कि पहले परमात्मा को देखो, क्या श्रुति कहती है कि पहले परमात्मा को देखो, परमात्मा कैसा है तो कर्म रूप है, क्या परमात्मा कर्म रूप है, जिसको हम मोटी भाषा में सगुण साकार कहते हैं। ये सगुण साकार रूप परमात्मा का ही है, ये कौन सा रूप है तो कर्म रूप है, इसको कर्म रूप कहा गया है। दूसरा परमात्मा का उपासना रूप है, उपास्य रूप है या भक्ति रूप है, भक्ति का मतलब प्रेम रूप है। दूसरा क्या है, परम प्रेम रूप, वो उपासना जो भी आप स्मरण करते हैं, जिसका भी आप बार बार चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो परमात्मा का सगुण निराकार रूप है, इसमें आकार नहीं है परंतु सगुणता है। और तीसरा है परमात्मा का निर्गुण निराकार रूप, जिसको वेदों ने ज्ञान के रूप में बता दिया, इसलिए ये तीन कांड कर्म उपासना ज्ञान ये परमात्मा को ही बताने के लिए परमात्मा के ही तीनों रूपों का बोध कराने के लिए ये तीन कांड वेदों के अंदर आ जाते हैं, तीन भाग। इसलिए कहते हैं कि पहला देखो, क्या पहला देखो, देखा इंद्रियों से जाता है, है ना। इंद्रियां देखने का काम करती है अर्थात कर्म करती है, इंद्रियों में कर्म होता है। पहले परमात्मा को देखो, किस रूप में देखना है तो जगत के रूप में देखना है। क्या परमात्मा बना है तो परमात्मा का बनाए हुए रूप को देखो, मैंने बताया है कि परमात्मा ही जगत बना हुआ है। अनेक श्रुतियों के द्वारा, अनेक स्मृतियों से ये सिद्ध हुआ है और महापुरुष भी बताते हैं। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा शरीर बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं बना है, ऐसा ही परमात्मा ही जगत बना हुआ है। ये परमात्मा का ही जगत है, परमात्मा ही जगत है, इसलिए हरिरेव जगत जगदेव हरि ही जो श्रुतियां कहती है तो ऐसा ही नहीं कहती है, अनुभवनीय है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का अनुभव करना है तो पहले परमात्मा को देखो, फिर परमात्मा को पढ़ो। क्या? पहले देखो और फिर पढ़ो। पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का मतलब होता है बार बार चिंतन करना, बार बार मनन करना, बार बार विचार करना। क्या? कि जिसको श्रुतियां कहती है ये परमात्मा है, तो क्या श्रुति झूठ बोल रही है? जीव परमात्मा को जगत बना देता है और परमात्मा जगत को ब्रह्म बना देता है। परमात्मा का मतलब ज्ञान, ज्ञान ही परमात्मा है। तो ज्ञान जगत को परमात्मा बना देता है और कर्म परमात्मा को जगत बना देता है। यही दोनों में अंतर है। तो पहले देखना चाहिए, इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक परंपरा स्थापित की, परमात्मा को देखने के लिए मंदिरों का निर्माण किया। क्या किया? कि मंदिर में परमात्मा को देखा जाएगा। और पढ़ने के लिए, परमात्मा को पढ़ने के लिए मस्जिदें, गिरजाघर आदि निर्माण हुए। ये परमात्मा को पढ़ने के स्थान है, मंदिर परमात्मा को देखने के स्थान है। और शास्त्र किसके लिए है? शास्त्र परमात्मा को जानने के लिए है, समझने के लिए है। इसलिए कहते हैं कि पहला देखो, फिर पढ़ो, फिर समझो और फिर बनो। ये क्रम है। परंतु ये मतलब जब इस प्रकार से होने पर भी सभी के अंतर्गत क्या है, देखने के अंतर्गत भी क्या है, पढ़ने के अंतर्गत, समझने के अंतर्गत और होने के अंतर्गत क्या चीज है, ये बताओ। पढ़ने में तुम हो कि नहीं है? पढ़ने में तुम हो कि नहीं है? देखने में तुम हो कि नहीं है? देखने में भी कौन है? तुम ही हो, है ना? पढ़ने में भी तुम ही हो, समझने में भी तुम ही हो, और होने में कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कोई? हा? तुम ही हो जाओगे। परंतु ये भी ध्यान रखो, इसका अर्थ नहीं कि तुम नहीं है अभी। होने का मतलब ये नहीं समझना है कि हम पहले नहीं है और अब हो गए, ऐसा नहीं है। समझना, केवल होनेपन में अर्थात तो अपनी सत्ता में थोड़ी सी विकृति आ गई तो हम क्या हो गए, छिप गए। होने पर भी नहींपन का क्या हो रहा है, हमें एक भ्रम निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, नहींपन का भ्रम निर्माण हो रहा है। जैसा सुषुप्ति में आपको अपने मनुष्य हूं ऐसा होते हो क्या उस समय, उस सुषुप्ति ने क्या कर दिया, तुम्हारे अंदर नहींपन का एक भ्रम निर्माण किया है। तुम्हारा निषेध नहीं किया सुषुप्ति, तुम्हारा तुम्हें तुम्हारा निषेध करती ये बात नहीं है। सुषुप्ति में भी तुम होते हो, परंतु होने पर भी अपने न होने का भ्रम होता है। इसी प्रकार से इस जगत जगत के विषय में भी यही बात है। हम जगत को देखते हैं तो परमात्मा नहीं है ऐसा भ्रम निर्माण होता है। क्या है, परमात्मा नहीं होने का भ्रम निर्माण होता है। इसलिए तो प्रश्न करते थे, परमात्मा होता तुम्हारा दिखता नहीं हा? और परमात्मा यदि होता तो ऐसा क्यों करते लोग, ये नहींपन का भ्रम निर्माण हुआ है। देखो जब तक तुम समझोगे नहीं, केवल देखने से और पढ़ने से, पढ़ने से भी और देखने से भी तुम्हारा भ्रम निर्माण निवृत्त नहीं होगा। क्या आप कितना भी देखोगे तो देखने से भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है, भ्रम की और मजबूती होती है। पढ़ने से भी भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है, पढ़ने से और तर्क वितर्क कुतर्क प्रश्न असंभावनाएं निर्माण हो जाती है। इसलिए शास्त्र समझाता है, क्या करता है, शास्त्र समझाता है, और समझाने का नाम ही ज्ञानकांड होता है। ज्ञानकांड क्या है, कर्मकांड है, देखने के लिए कर्म देखने के लिए होता है, उपासना पढ़ने के लिए होती है, और ज्ञान समझने के लिए होता है। और समझा कब जाता है, सुनने मात्र से समझा नहीं जाता है, सुनने के बाद जब मनन करेंगे चिंतन करेंगे और चिंतन के बाद जब निधिध्यासन करेंगे तब आप समझोगे, अन्यथा नहीं। क्या, इसलिए ये क्रम बताया, क्यों बताया, क्यों, पढ़ने मात्र से तो देखने मात्र से तो मल की निवृत्ति हो जाएगी। मंदिर में रोज परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं तो आपके कर्म के संस्कार तो मिट जाएंगे। मल क्या है तुम्हारे अंदर, क्या मलिनता है तुम्हारी, तुम किससे मलिन हो गए हो, तुम हो गए कर्म संस्कारों से मलिन। क्या हो गए, कर्म संस्कारों से मलिन हो गए। गुणों के उत्थान पतन से तुम विक्षिप्त हो गए हैं, क्योंकि जैसा गुण तुम्हारे अंदर आ जाता है वैसा ही तुम अपने को मानते हैं। कभी कुछ मानते हो, कभी कुछ मानते हो, कभी कुछ मानते हो, ऐसा प्रश्न किया तो ये क्यों मानते हो, इसका कारण है विक्षेप, और विक्षेप का कारण है गुणों का उत्थान पतन। प पढ़ने से अर्थात बार बार मनन करने से, बार बार चिंतन करने से, बार बार अध्ययन करने से, अर्थात ये क्या होगा, मनन होगा, मनन ये चिंतन से विक्षेप दूर होता है, विक्षेप गुणों का उत्थान पतन धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। ध्यान रखो, विक्षेप कोई वस्तु नहीं है क्या, देखो ये ध्यान रखो, बाहर की वस्तु तुम्हें विक्षिप्त नहीं करती है क्या, बाहर की कोई वस्तु ना साधक है ना बाधक है, अरे बाहर कुछ है ही नहीं तो क्या साधक बाधक होगा, प्रश्न यही होता है। परंतु हम बाहर के वस्तु को लेकर के अपने को परेशान मानते हैं, है ना, धन नहीं अब लोग पैसा नहीं मिल रहा है तो परेशान है, और कोई कोई तो करे मर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। इसका मतलब वो किस लिए मर रहे, धन के लिए मर रहे कि नहीं मर रहे, जो मरे हैं वो किसके लिए मरे हैं, धन के लिए ना। इसका मतलब उनके अंदर जो धन का लोभ कहो या धन की जो कामना है, कामना में ही मरे कि किसमें मरे हो। कहने का तात्पर्य है कि हमें विक्षिप्त, हमें परेशान कौन करते हैं, ये गुण करते हैं गुण। इसलिए इन गुणों का विक्षेप दूर करने के लिए परमात्मा को पढ़ना चाहिए, समझना, किसको पढ़ना चाहिए, जो मंदिर में जो आप देख रहे हैं उस परमात्मा को पढ़ो। पढ़ते हम परमात्मा को मंदिर में जाकर के, हम परमात्मा को बार बार पढ़ते हैं कि नहीं, परमात्मा का मुखमंडल कैसा है, परमात्मा का मुकुट कैसा है, परमात्मा के आयुध क्या क्या है, परमात्मा का पीताम्बर कैसा है, आदि आदि पढ़ते हैं कि नहीं। इसको पढ़ना नहीं कहा जाता है क्या, इसको पढ़ना नहीं कहा जाता है। इसलिए कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। परमात्मा को पढ़ना क्या है, परमात्मा के प्रेम को पढ़ो, प्रेम को, समझे ना क्या, परमात्मा के प्रेम को पढ़ो, क्योंकि परमात्मा का यदि प्रेम नहीं होता तो क्या जगत या जीव का कल्याण हो सकता है, नहीं। परमात्मा को पढ़ो अर्थात प्रेम को पढ़ो, तुम्हारे अंदर जो प्रेम है वो परमात्मा का ही है, वो परमात्मा ही है, परमात्मा का ही रूप है। पढ़ने का अर्थ होता है उसके अंदर के दोष निकालना, क्या, उसको शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ करना, प्रेम यही है। परंतु हम प्रेम को काम बनाते जा रहे हैं, प्रेम को हो मुंह बनाते जा रहे हैं, प्रेम को हो लोभ बनाते जा रहे हैं। इसका नाम हम प्रेम को नहीं पढ़ रहे, काम में भी प्रेम है, मोह में भी प्रेम है, लोभ में भी प्रेम है, सभी में प्रेम है, प्रेम की व्याप्ति सभी में है। परंतु हम नहीं पढ़ रहे हैं अर्थात उसके अंदर का विचार नहीं कर, विवेक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम किसी भी वस्तु को प्रेम कहते हैं। यही चीज करने के लिए ये मंत्र बहुत गहरा है, बहुत छोटे वाक्य है इसके अंदर, परंतु अर्थ इसका, क्योंकि वेदों के मंत्र जो होते हैं वो सूत्र रूप में होते, सूत्र रूप में, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्ववत विश्वतो मुखम, सूत्र विश्व कहते हैं जिसमें अक्षर कम हो परंतु उसकी दृष्टि व्यापक हो और संदेह से रहित हो। सूत्रम सूत्र विदु विदुहु कहा है, ऐसे इसको सूत्र कहा जाता है, सूत्रकार उसको सूत्र कहते हैं। तो ये वेदों के अर्थात ये ज्ञान का सूत्र है। ये ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ये सूत्र है। सूत्र समझिएगा, आपको संक्षेप में बता दिया है। अच्छा, मैं ये आपको एक सामान्य दृष्टि से पूछता हूं, मिट्टी से घड़ा बनता है या सोने से आभूषण बनता है, है ना? तो क्या आभूषण सोने के अलावा है? हाँ, सोना ही आभूषण बना है किसी कारणवश, तो क्या आभूषण सोने से अलग हो जाएगा? नहीं, आभूषण बनने पर भी सोना सोना ही है। हम लेते हैं सोने को ही, परंतु कहते हैं, मानते हैं, बोलते हैं आभूषण को। हमने हार खरीद लिया, कंगन खरीद लिए, कुंडल खरीद लिए, है ना? परंतु होता क्या है? सोना ही। ये श्रुति ये आपको बता रही है कि तुम किसी को भी देखो, चाहे जड़ को देखो, चेतन को देखो, पशु को देखो, पक्षी को देखो, मनुष्य को देखो, किसी को भी देखो, तुम परमात्मा को ही देख रहे हो। परमात्मा के अलावा दूसरी कोई वस्तु हो तब तो दिखे, परंतु तुम्हारे अंदर देखने में भ्रांति निर्माण हो रही है। देख परमात्मा को ही रहे, परंतु कह रहे जगत, मान रहे जगत, बोल रहे जगत। देखने देखा परमात्मा ही जाता है, माना परमात्मा ही जाता है, बोला परमात्मा ही जाता है, समझा परमात्मा ही जाता है, हुआ भी परमात्मा ही जाता है, कोई भेद नहीं आता है। समझ लेना, इसलिए ये मत समझ लो कि कर्म तुच्छ है और उपासना श्रेष्ठ है, या उपासना तुच्छ है ज्ञान श्रेष्ठ है, ऐसा मत समझना। कोई अंतर नहीं है, चाहे परमात्मा साकार हो, चाहे परमात्मा सगुण निराकार हो, चाहे परमात्मा निर्गुण निराकार हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि सगुनी भजले निर्गुनी पावता, आप सगुण को भी भजन करोगे तो निर्गुण को वो प्राप्त हो ही जाता है, है ना? आप शरीर के एक उंगली को भी पकड़ लिया तो तुम पकड़ में आए कि नहीं आए? तुम पकड़ में आ गए। इसलिए साकार का निषेध वेदांत शास्त्र में नहीं है। वेदांत शास्त्र कर्म का निषेध नहीं करता है। क्या? वेदांत शास्त्र कर्म का निषेध नहीं करता है, बल्कि कर्म को ब्रह्म सिद्ध करता है। ये ध्यान रखो। क्या? कर्म का निषेध कोई भी शास्त्र और वेदांत तो कतई नहीं करता है। लोग कहते हैं कि ये वेदांती है महाराज। वेदांती कहने से क्या होता है? वो समझते हैं कि कर्म के विरोधी है। क्या? और जो कर्म के विरुद्ध में अपने को वेदांती मानते हैं, उनके जैसा नादान कोई व्यक्ति नहीं है। वेदांत कर्म का निषेध, परमात्मा कर्म का निषेध करने का अर्थ होता है कि परमात्मा अपना अपना ही निषेध कर रहा है। अपना अपना निषेध हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस श्रुति के अंदर यहां इसीलिए हमारे शास्त्रों की एक पद्धति है, परमात्मा की व्याप्ति के रूप में परमात्मा को सिद्ध करना। क्या? और व्याप्ति में तीन वस्तु होती है। क्या होती है? व्याप्ति में तीन वस्तु होती है, एक व्याप्य होता है, एक व्यापक होता है, और व्याप्य व्यापक दोनों मिलकर के व्याप्ति होती है तीसरी, समझे ना। ये जगत क्या है? जगत ये व्याप्ति है, व्याप्ति समझ ली ना। जगत क्या है? व्याप्ति है। परमात्मा व्यापक है, माया या अविद्या व्याप्य है, अविद्या और माया दोनों मिलकर के जगत व्याप्ति है। किसकी व्याप्ति? परमात्मा की व्याप्ति। इसी बात को यहां ये मंत्र बता रहा है, ईशावास्य विदम सर्वम जगत्याम जगत। श्रुति कहती है कि ईश्वर के द्वारा ही ये अवास्य आच्छादित है। आच्छादित ये आच्छादन कैसा है? दिखता नहीं है परंतु होता है। सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। क्या आच्छादित है? तो कहा कि जगत्याम जगत अर्थात जगत में जगत। जगत्याम यहां सप्तमी है। क्या है? जगत्याम यहां सप्तमी है अर्थात जगत में जो जगत है। अब दोनों प्रकार से आप लगा सकते हैं, एक जगत दृश्य है, एक जगत अदृश्य है। क्या? एक जगत जो है वो दृश्य है, शरीर रूप जगत जो है वो दृश्य है, और जीव रूप जगत जो है वो अदृश्य है। क्या? जीव भी जगह है, समझ लीजिए। जगत किसको कहा जाता है? जायतीति ज और गच्छतीति ग। जो उत्पत्ति के उत्पत्तिवान हो गया और जो हो नाशवान हो गया, क्या उसको जगत कहा जाता है। तो जीव भी उत्पन्न हुआ और देह भी उत्पन्न हुआ। जीव भी नष्ट होता है और देह भी नष्ट होता है। इसलिए एक जगत है जीव और एक जगत है देह। जगत्याम जगत दोनों तरफ से अर्थ लगा सकते हैं, जीव में देह और देह में जीव है कि नहीं। तुम अपने को मनुष्य कहते हो, मैं मनुष्य हूं ऐसा जो कहते हो तो कैसा कहते हो? देह में अपने को मान करके कहते हो कि अपने में देह मान करके कहते हो? मेरी बात समझ रहे? कैसा कहते हो? पहला तो कहते हैं देह में अपने को मान करके अपने को देही के रूप में कह रहे हैं, मैं मनुष्य हूं ऐसा जब आप कहते हो, बोलते हो, जानते हो, मानते हो, कहते हो तो देह में मैं को मान करके कह रहे हैं। क्या? देह में मैं मान करके कह रहे हैं तो देह मैं बन गया, मैं का ही रूप है इसलिए मैं बन जाता है। देह का और जीव का तादात्म्य मान करके अपने को कह रहे हैं। और सुषुप्ति में अपने को मतलब जीव में देह मान करके आप उस अदृश्य अवस्था को जाते हैं। क्या? सुषुप्ति में आप नहीं होते ऐसा नहीं है, आपका देह नहीं होता ऐसा नहीं है, परंतु देह क्या होता है? अदृश्य होता है, अव्यक्त होता है। क्या होता है, अदृश्य होता है, अर्थात देखने में ही दृष्टि से वो जल हो जाता है, दृष्टि में नहीं आता है और न वाणी में आता है। तो सुषुप्ति में देह जीव में लय को प्राप्त करता है, लय को प्राप्त जीव में का मतलब जिसके कारण जीव भाव आया है उस कारण में, क्योंकि उसी से ही जगत निकला हुआ है। अर्थात अविद्या में, क्योंकि अविद्या के उपाधि से ही आत्मा जीव भाव को प्राप्त हुआ है, इसलिए उस जीव में का मतलब होता है जो जीव की जो उपाधि अविद्या है उस अविद्या में देह का लय होता है, तो देह अदृश्य होता है, परंतु देह होता है। किस रूप में होता है? वो संस्कार रूप में होता है। क्या होता है? नहीं होता तो फिर जागृति में आता कहां से? जागृति में कैसा आता फिर? तो सुषुप्ति में आपका देह होता है परंतु संस्कार रूप से होता है, और उसको हम इन इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते हैं। इसलिए यह जगत्याम जगत जीव में देह या देह में जीव, दोनों भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यहां एक और तीसरा भी शब्द दिया, सर्वम। क्या दिया है? सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसका अर्थ है एक देह भी है, एक जीव भाव भी है, और जीव भाव की कारण जो है अविद्या। या सर्व शब्द का अर्थ क्या होता है? अविद्या, अविद्या, अविद्या ही सर्व है, समझेंगे। तो यहां यत्किंच अर्थात जो भी कुछ है, जो भी तुम बुद्धि से जानते हो, मन से मानते हो, चित्त से चिंतन करते हो, या इंद्रियों से जो देखते हो, बोलते हो, अर्थात कर्म रूप या अदृश्य रूप, दृश्य रूप या अदृश्य रूप, अव्यक्त रूप। माया क्या है? अव्यक्त है। आपका जीवपना अदृश्य है, देहपना दृश्य है, ये तीन वस्तु है। क्या बात समझ में आई? एक देहपना है, एक जीवपना है, और एक अविद्यापन है। अविद्यापन, ये अविद्यापन जो है इसी को सर्व सर्व कहा गया है। और जगत्याम या जीव को कहा गया, और जगत देह को कहा गया। ये जो तीन वस्तु हैं, इन तीनों में भी ईश्वर की व्याप्ति है। ईश्वर क्या चीज है? या ईशावास्य, ईश्वर ने कहा, ईश का ईश, क्या कहा? ईश्वर शब्द का प्रयोग श्रुति नहीं कर रही है, ईश शब्द का श्रुति ईश्वर श्रुति बता रही है। ईश क्या है? ईश का अर्थ ईश्वर, ईश्वर भी होता है, नहीं होता ये बात नहीं है, परंतु यहां श्रुति का ईश्वर में तात्पर्य नहीं है। हां, आत्मा के रूप में तो ईश्वर का तात्पर्य है, आत्मा और ईश्वर दोनों एक है। यह ब्रह्म का संकेत कर रही है श्रुति, ईश शब्द से ब्रह्म का संकेत कर रही है, आत्मा का संकेत नहीं कर रही है। क्योंकि इस सभी के अंदर व्याप्ति जो है वो ईश्वर की है। क्या है? ईश्वर की व्याप्ति है। ईश शासने धातु से ही ईश दो ईशाम इष्टे इति इट तीन ईशा जो इष्ट है। इष्ट किसको कहते हैं? भाष्यकार कहते हैं कि ईशा इष्टे अर्थात जो इष्ट है। इष्ट किसको कहा जाता है? इष्ट का मतलब होता है आप जिसकी हमेशा इच्छा करते हैं। क्या? आप हमेशा जिसकी इच्छा करते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में, तीनों अवस्थाओं में आप किसकी इच्छा करते हैं? किसकी इच्छा करते हैं? सुख की आनंद की इच्छा करते हो कि नहीं करते हो? किसकी इच्छा करते हैं? तो आपका इष्ट क्या हो गया? आपका इष्ट सुख हुआ, आपका इष्ट आनंद हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? आनंद को चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अच्छा, आपको पूछा कि तुम आनंदित होना चाहते हो, तुम जागृति में आनंदित होना चाहते हो या सुषुप्ति में आनंदित होना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे? आप घर में आनंदित होना चाहते हो या बाहर आनंदित होना चाहते हो? आप वर्तमान में आनंदित होना चाहते हो या भविष्य में आनंदित होना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे? तो कहोगे महाराज हमें तो हमेशा हमेशा के लिए आनंदित होना चाहते हैं। इसका मतलब क्या? कि जो तुम्हारे जो इच्छा का विषय है, अत्यंतिक विषय, उसी को इष्ट कहा जाता है। तो इसका अर्थ है कि नित्य अखंड भूत भविष्य वर्तमान से रहित, जिससे जिसके अंदर कालावच्छिन्नता नहीं है, देहावच्छिन्नता नहीं है, वस्तु अवच्छिन्नता नहीं है, जो अवच्छिन्नता से रहित जो अपरिच्छिन्न वस्तु है वो केवल ब्रह्म ही है और वही आनंद है। इसका मतलब है कि सभी का इष्ट ब्रह्म है। क्या? सभी जीवों का इष्ट जो है वो ब्रह्म ही है। इसलिए तो श्रुति कहती है जीवो ब्रह्म वना पर है, क्योंकि जीव ब्रह्म से अलग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वही अपना स्वरूप की ही हमेशा इच्छा रखता है, उसका स्वरूप ही उसका इष्ट है। और इसी को बताने के लिए ही, यही स्पष्ट करने के लिए ईश शब्द का यहां श्रुति प्रयोग करती है, ईश्वर शब्द का, भगवान शब्द का, परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं करती है। क्यों? देखो, ईश्वर का भी प्रयोग करती है तो ईश्वर की व्याप्ति सर्वत्र सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि मायोपाधिक जो वस्तु है उसको ईश्वर कहा जाता है। या ईश शब्द से जहां माया ना उपाधि है ना माया निरुपाधि है। क्या? माया जहां उपाधि भी नहीं है और जहां निरुपाधिकता भी नहीं है, ऐसी वस्तु के तरफ संकेत करती है ईशा शब्द से। श्रुति जो है वो ऐसे तत्व के तरफ संकेत कर रही है जहां तुला विद्या भी नहीं है और जहां मूला विद्या भी नहीं है। क्यों? मूला विद्या से ब्रह्म ईश्वर भाव को आ जाता है और तुला विद्या से ईश्वर जगत भाव को आता है, जीव भाव को आता है, ध्यान रखो। क्या? ईश्वर में भी ब्रह्म की व्याप्ति है, परंतु ईश्वर की ब्रह्म में व्याप्ति नहीं है, तो अव्याप्ति सिद्ध होती है। समझे ना, क्या हो जाएगी? ईश्वर की ब्रह्म में व्याप्ति नहीं है, ब्रह्म की ईश्वर में व्याप्ति है। इसलिए श्रुति यहां ईश्वर ईश्वर शब्द का प्रयोग न करके ईश शब्द का प्रयोग करती है। इष्ट अर्थात आनंद, ईश्वर में आनंद की व्याप्ति है, परंतु आनंद में ईश्वर की व्याप्ति नहीं है। क्यों? ईश्वर जो बना हुआ है वो उसके अंदर माया की उपाधि लग करके बना हुआ है। तो ईश्वर शब्द आ जाएगा तो माया भी आएगी कि नहीं आएगी? माया छिन्न जो चैतन्य है उसी को ही ईश्वर कहा जाता है, अविद्या विच्छिन्न चैतन्य जो है उसी को ही जीव कहा जाता है, उसी को ही कोई आभास आभासवादियों ने आभास कहा, प्रतिबिंब प्रतिबिंबवादियों ने बिंब प्रतिबिंब कहा, अनेक प्रकार के वाद निर्माण हुए, अर्थात कथन बोलना निर्माण हुआ है अपने अपने साधना के अनुसार। परंतु ईश्वर शब्द भी जो है वो ऐश्वर्यवान है, इसलिए उस चैतन्य को ईश्वर कहा गया है। और ऐश्वर्य से युक्त वही होता है जहां उपाधि लग जाती है, धन की उपाधि लग गई है तो धनी हो गया, श्रीमंत हो गया, है ना? श्रीमंत जो नहीं है उसको आप श्रीमंत, धन नहीं है तो क्या उसको आप श्रीमंत कहेंगे? धन की उपाधि से ही तो वो व्यक्ति श्रीमंत बन गया है। इसी प्रकार से माया की उपाधि से ही ब्रह्म ईश्वर भाव को आया है, तो उसके ईश्वर के अंदर भी ईश्वर की व्याप्ति सर्वत्र नहीं है। हां, सर्वगतत्व ईश्वर में है। क्या? सर्वगतत्व ईश्वर में जरूर है, परंतु सर्वव्याप्ति मात्र नहीं है। ये भिन्नता करने के लिए यह ईश शब्द से श्रुति संकेत करती है, ईशावास्य। ये जगत किसके द्वारा? देखो, ईश्वर भी जगत का कारण माना है कि नहीं है? क्या ईश्वर को जगत का कारण श्रुतियों ने भी माना है कि नहीं है? चाहे वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहो, चाहे जो भी कारण कहो, परंतु कारणत्व तो ईश्वर के अंदर आया कि नहीं आया? जगत के प्रति ईश्वर को कारण माना जाता है, ब्रह्म को कारण नहीं माना जाता है। ब्रह्म में जगत का कारणत्व नहीं है, ध्यान रखो। ब्रह्म शुद्ध है, कार्य कारण भाव से अतीत है, समझ लेना। तो कहने का तात्पर्य है कि यही स्पष्ट करने के लिए या ईश शब्द का श्रुति ही एक सूत्र के रूप में बताती है, उस ब्रह्म का निर्देश करने के लिए जो ईश्वर का भी इष्ट है। जीव का इष्ट तो है ही, परंतु ईश्वर का भी इष्ट है। क्यों? ईश्वर में भी आनंद की व्याप्ति है, और ईश्वर भी आनंद में व्याप्य है। ऐसा ही जीव के अंदर भी यह ब्रह्म की व्याप्ति है, और जीव ब्रह्म में व्याप्य है। ऐसा ही देह में ब्रह्म की व्याप्ति है, और देह ब्रह्म में व्याप्य है। इसलिए यह श्रुति कहती है कि अवास्य, अर्थात ब्रह्म के द्वारा ये संपूर्ण जगत कैसा है? आच्छादित है। आच्छादित अर्थात अंदर बाहर भरा हुआ है, ये संकेत कर रही है। जैसा सोने में अब आभूषण में सोना अंदर बाहर भरा हुआ, आपको यदि पूछा कि आभूषण में सोना अंदर है कि सोना बाहर है, तो आप क्या कहोगे? कि आभूषण के अंदर सोना है, या आभूषण के बाहर बाहर सोना है, अंदर बाहर भेद है सोने में। इसी प्रकार से ये नहीं कहा जाता है कि जगत के अंदर परमात्मा है या जगत के बाहर परमात्मा है। जगत के अंदर भी परमात्मा है और जगत के बाहर भी परमात्मा है और जगत ही परमात्मा है, ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो हम कर्म का भेद कर रहे हैं, उपासना का भेद कर रहे हैं या ज्ञान का भेद कर रहे हैं, ये भेद मिटाने के लिए इसकी आवश्यकता है। क्या ज्ञान का मतलब कौन सा ज्ञान? ये अद्वैत ज्ञान निर्माण करने के लिए ज्ञान कांड की जरूरत है, भेद को मिटाने के लिए। आप जो समझ रहे हो कि कर्म अलग है, उपासना अलग है और ज्ञान अलग है, तो इन तीनों को एक बनाने के लिए, ये तीनों भिन्न मत समझना, तीनों एक ही है। इसलिए इस शास्त्र आपको समझाता है। क्या शास्त्र आपको समझाता है? और फिर जब शास्त्र आपको समझाएगा तब आप वैसा बनोगे। बनने के लिए समझाता है, सुनने के लिए नहीं, बनने के लिए। इसलिए आश्रुति कहती है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृदह कस्य स्विद्धनम। घड़ी ने जवाब दे दिया है, 31 हो गया, इसलिए आज ये पूर्वार्ध में यही समाप्त करते, आगे का जो उत्तरार्ध है कल बता देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।